रात के लगभग 10 बज रहे थे। इशिका और अभिमन्यु दोनों अभिमन्यु के केबिन में काउच पर एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। कुछ देर पहले ही उनके बीच इंटिमेट मोमेंट बीता था। इशिका को लगा कि इस पल के बाद शायद अभिमन्यु का ध्यान भटक जाएगा या वो बेहतर महसूस करने लगेगा, लेकिन अभिमन्यु अभी भी खोया हुआ लग रहा था। इशिका ने अपना सिर उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते हैं, फिर तुम क्यों उनकी बातों को सोचकर खुद को तकलीफ दे रहे हो? क्योंकि कई बार दिमाग के आगे दिल हार जाता है। मैं हमेशा से खुद को स्ट्रांग रखने की कोशिश में बहुत कुछ करता आया हूँ। मैं अपने सारे इमोशंस को दबाना सीख गया हूँ। दादी के अलावा पहले मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। वे जानते हैं मेरी कमजोरी क्या है, बस बार बार वही बोलकर मेरा दिल दुखाते हैं, अभिमन्यु ने भारी आवाज में कहा। वो उठकर बैठने को हुआ, लेकिन इशिका अचानक उसके ऊपर आ गई थी। इशिका ने अभिमन्यु की आंखों में देखा और कहा, ऐसा क्या कहा उन्होंने जो तुम इस कदर परेशान हो गए? मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, कभी तुम्हें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी उन्होंने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, पर तुमने हमेशा खुद को स्ट्रांग रखा है। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और प्रशांत के शब्दों को दोहराते हुए कहा, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर मैं कमजोर पैदा हुआ तो अब तक जिंदा क्यों हूं? मुझे मर जाना चाहिए था। उन्होंने बहुत कोशिश की मुझसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन अभी भी मैं उनकी नाक में दम करके रखता हूं। आखिर मैं मर क्यों नहीं? बोलते हुए अभिमन्यु की आवाज भारी होने लगी। उसके पूरी बात कहने से पहले ही इशिका ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। उसे अभिमन्यु के मुंह से ये सब सुनकर इतना बुरा लग रहा था। प्रशांत ने तो खुद अभिमन्यु को ये सब बातें सुनाई थीं, और भी न जाने क्या क्या नहीं कहा होगा। अभिमन्यु की तकलीफ इशिका अच्छे से समझ सकती थी। वे दोनों भले ही अपने माँ बाप से पीछा छुड़ाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर वे दोनों ही इस प्यार के लिए तड़प रहे थे। पहले इशिका को आदर्श या मालविका भला बुरा कहकर उसका दिल दुखाया करते थे, तो इशिका उनके सामने स्ट्रांग रहने की कोशिश करती, लेकिन अकेले में वो बहुत रोया करती थी। कुछ ऐसा ही हाल अभिमन्यु का था। इशिका को तो उसके माँ बाप का प्यार मिल गया था, लेकिन प्रशांत और अंजलि को तो उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं थी। एक छोटे से किस के बाद इशिका अभिमन्यु से अलग हुई और उठते हुए बोली, वेरी बैड मिस्टर राजवंश, आपने वादा किया था कि मेरे साथ डेट पर चलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अगर तुम्हें याद हो तो तुम मुझसे छुपकर मिलने आने वाले थे। ध्यान भटकाने का तरीका अच्छा है इशिका, लेकिन सच में मूड नहीं है, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, अभिमन्यु ने मायूसी से कहा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ऐसे हालात में अकेले छोड़कर चली जाऊंगी? ऑफिस में बिल्कुल नहीं रहना है, मेरे साथ घर चलो, इशिका ने अभिमन्यु से सख्त आवाज में कहा। अब तक वो प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अभिमन्यु के ना मानने पर उसे भी सख्ती दिखानी पड़ी। मेरा राजवंश विला जाने का बिल्कुल मन नहीं है, अभिमन्यु ने नजरें झुकाकर कहा। हाँ तो किसने कहा राजवंश विला जाना है? लगता है डैड की बातें सच साबित होती नजर आ रही हैं। मेरे घर चलो, इशिका ने जवाब दिया और फिर अभिमन्यु के पास आकर उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। उसने अभिमन्यु का जैकेट अपने हाथ में लिया और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाने लगी। केबिन के थोड़ी ही आगे पृथ्वी खड़ा हुआ था। उसने कभी अभिमन्यु को इस तरह से बिखरे हुए हाल में नहीं देखा था। उसे इस तरह देखकर पृथ्वी को भी प्रशांत पर गुस्सा आने लगा। वहीं इशिका अभिमन्यु के साथ पृथ्वी के पास जाकर बोली, मैं अभिमन्यु को अपने साथ सिंघानिया मेंशन जा रही हूँ। बिना सिक्योरिटी के जाना सही नहीं रहेगा, पृथ्वी ने जवाब में कहा। अभिमन्यु ने आज ही नक्श और नकुल को उनकी सच्चाई दिखा दी थी। अभिमन्यु ने जो भी किया उससे प्रशांत उससे गुस्सा था। पहले ही वो उसे काफी कुछ सुना चुका था। पृथ्वी को बिल्कुल यकीन नहीं था कि अब वो अभिमन्यु के साथ कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोचेंगे। सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, सब ठीक ही तो है, इशिका ने हैरानी से पूछा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उसकी बात के जवाब में कहा, नहीं सब ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो प्रशांत राजवंश मुझे वो सब नहीं बोलता और ना ही मेरे ऊपर हाथ उठाता। मैंने आज बोर्ड मीटिंग में नक्श की हरकतों की वजह से उसे डिमोट कर दिया था। इस वजह से वो राजवंश एम्पायर छोड़कर चला गया। नकुल राजवंश ने भी कंपनी के फंड्स को लेकर धोखा किया था, इसलिए मैंने उसे अरेस्ट करवा दिया। जैसे ही इशिका को ये सब पता चला वो हैरान रह गई। अब उसे प्रशांत के गुस्से की वजह भी पता चल गई थी। प्रशांत का गुस्सा जायज था, अभिमन्यु ने एक ही दिन में उसकी पोजीशन पूरी तरह से खराब कर दी थी। ठीक है, ऐसे में सिक्योरिटी लेना ही सही रहेगा, इशिका ने जवाब दिया। ड्राइव मैं करूंगा, पृथ्वी बोला और उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही उनके आगे आगे चलने लगा। इशिका को लगा कि वह अभिमन्यु को अपने साथ सिंघानिया मेंशन लेकर जाएगी, रास्ते में लॉन्ग ड्राइव पर अभिमन्यु का मूड भी सही हो जाएगा। इशिका के सारे प्लान्स पर पानी फिर गया था। पृथ्वी उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि अभिमन्यु और इशिका पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। थोड़ी देर में वे सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। अभिमन्यु अभी भी खराब हालत में बैठा था तो इशिका ने उसके हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर गई। उसी समय केशव भी घर पहुंचे ही थे कि उन्होंने अभिमन्यु और इशिका को इस तरह नजदीक देखा तो वे उन्हें घूरते हुए उनके पास गए। मैंने तुम्हें मना किया था मेरी बेटी के साथ रहने से, फिर तुम यहाँ क्यों? केशव बनावटी गुस्से के साथ उसे डांटने जा रहे थे तभी इशिका ने उसे इशारे से शांत करवा दिया था। फिर एक नजर केशव ने भी अभिमन्यु की तरफ देखा जो खोया हुआ लग रहा था। केशव ने गहरी सांस ली और कहा, इसे अपने बेडरूम में ले जाओ, काफी देर हो गई है, फिर भी मैं डिनर भिजवाता हूँ। इशिका ने उनकी बात मान ली और अभिमन्यु को लेकर ऊपर कमरे में पहुंच गई। वहीं उनके जाते ही केशव ने पृथ्वी से पूछा, अभिमन्यु मेरी बातों से कितना भी इनकार क्यों ना कर ले, लेकिन सच वो भी जानता है कि राजवंश फैमिली के लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, ना जाने सर को कब समझ आएगा कि अब उन्हें अपने शेयर्स अलग करके बाकी राजवंश फैमिली से पूरी तरह अलग हो जाना चाहिए। अब तक दादी की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दादी बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी ने जवाब दिया। वो भी अभिमन्यु के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा था। केशव ने हां में सिर हिलाकर कहा, ठीक कह रहे हो। उसके बाद वो अंदर जाने से पहले पृथ्वी से फॉर्मेलिटी के तौर पर बोले, तुम अंदर आना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं मिस्टर राजवंश को अकेला नहीं छोड़ने वाला, पृथ्वी ने सीधे तौर पर कहा और केशव के साथ अंदर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु घर नहीं आया तो वसुधा और राधिका को टेंशन होने लगी। ऊपर से अभिमन्यु किसी का कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। मजबूरन वसुधा को पृथ्वी को कॉल करना पड़ा और उसने राजवंश एम्पायर में जो भी हुआ उसके बारे में बता दिया था। पृथ्वी से सब जानने के बाद वसुधा के चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव उभर आए थे। राधिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं, दोनों बच्चे तो बिल्कुल ठीक है ना? नहीं, मेरा अभिमन्यु ठीक नहीं है, कब तक ये लोग मेरे बच्चे को तकलीफ देते रहेंगे, बस बहुत हो गया, वसुधा गुस्से में बोली और तेज कदमों से चलते हुए राजवंश विला की तरफ जा रही थी। उसके पीछे पीछे राधिका भी आने लगी। जैसे ही वसुधा ने राजवंश विला में कदम रखा तो उर्वशी और प्रशांत एक साथ थे। उर्वशी रो रही थी, नक्श उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था तो वही नकुल अरेस्ट हो चुका था।
वसुधा को देखते ही उर्वशी रोते हुए गुस्से में उसके पास आकर बोली, अब तो खुशी मिल गई ना, आपके उस पोते ने मेरे पति और मेरे बेटे के साथ क्या कर दिया, उनका हक मारकर वो कहीं नहीं जा पाएगा, देखना एक दिन वो भी रोड। उर्वशी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वसुधा ने उसके गाल पर कसकर तमाचा लगाया और उसके शब्द उसके मुंह में अटक कर रह गए थे। वसुधा ऐसा कुछ करेगी इसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। वहीं प्रशांत भी हैरानी से वसुधा की तरफ देखने लगा। वो वसुधा के पास आकर बोला, उस लड़के ने इतना सब कुछ कर दिया लेकिन आज भी आप उसे सपोर्ट कर रही हैं, आपसे यही उम्मीद थी माँ, कम से कम अपने सगे बेटे का तो ख्याल किया होता। इस राजवंश फैमिली में मेरे अभिमन्यु और दिग्विजय के अलावा और किसी से कोई रिश्ता नहीं है, एक मेरे भाई की तरह है तो दूसरे को मैंने अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार से पाला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ये कहने की कि उसे मर जाना चाहिए? अरे मर तो तुम लोगों को जाना चाहिए, वो बेदिल औरत मेरे बेटे को पहले ही पैदा करके हजारों तकलीफों के बीच में छोड़कर चली गई और तुम घटिया आदमी, तुमने उसका एक दिन भी ध्यान नहीं रखा। मैं देखती हूँ अब मेरे होते हुए कैसे तुम लोग इस घर में टिक पाते हो। वसुधा गुस्से में प्रशांत पर बिफर पड़ी थी। अगर आप ये भूल गई हैं कि मैं आपका बेटा हूँ तो मुझे भी भूल जाना चाहिए कि आप मेरी माँ हैं। अब तक मैं आपका बहुत मान लिया लेकिन अब और नहीं, आपकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा, प्रशांत भी चिढ़ते हुए बोला। वो वसुधा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके करीब आता उससे पहले ही राधिका उनके बीच में आ गई। गलती से भी कुछ करने की कोशिश मत करना वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा, राधिका ने उसे घूरते हुए सख्त आवाज में कहा। और आप कौन होते हैं हमारे घर के मामले में बीच में बोलने वाले? प्रशांत बोला, मैं इशिका की माँ हूँ और अभिमन्यु की सास, इतना रिश्ता काफी है उन दोनों का साथ देने के लिए, राधिका ने भौंयें उठाकर कहा। उनके बीच की गहमागहमी बढ़ गई थी। मामला इतना गर्म हो गया था कि साफ जाहिर हो रहा था कि प्रशांत अपने गुस्से में किसी को भी चोट पहुंचा सकता था। वहीं दरवाजे पर खड़ा पार्थ सब कुछ देख रहा था, उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। पार्थ ने मन ही मन कहा, यही तो देखना था मुझे इस घर को टूटते बिखरते हुए, इस घर के लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए। अब तक जो चिंगारी उनके मन में पनप रही थी आखिर उस चिंगारी को हवा मिल ही गई, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अभिमन्यु, आग तो तुमने लगा दी लेकिन तुम खुद इसमें जलकर खाक हो जाओगे। वहीं प्रशांत ने राधिका की बात का जवाब देते हुए कहा, अपनी बेटी और दामाद से रिश्ते निभाने के लिए उनके पास काफी लोग हैं, यहाँ आपका कोई काम नहीं है मिसेस सिंघानिया। इतना कहकर प्रशांत ने राधिका को दूसरी तरफ धकेल दिया लेकिन पार्थ बीच में आकर उसे संभाल लिया था।
पार्थ गुस्से से प्रशांत की तरफ घूर रहा था। पार्थ की नजरों में गुस्से को महसूस करते हुए प्रशांत ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बस इन्हीं की कमी रह गई थी। पता नहीं कौन से पाप किए थे जो ये दोनों लड़के पैदा हुए। तुम्हें सुनैना ने ही पैदा किया है ना, अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। नहीं, मुझे सिखाने के लिए मेरी माँ काफी है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने गिर जाएंगे कि एक बूढ़ी औरत और एक बीमार औरत पर अपना जोर आजमाने की कोशिश करेंगे, पार्थ ने सख्त आवाज में कहा। पार्थ प्रशांत से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वसुधा और राधिका को लेकर वहां से जाने लगा। जाते हुए वो वसुधा से बोला, आपको इस तरह बिना सिक्योरिटी के उनके पास नहीं आना चाहिए था। ये इंसान खतरनाक है और किसी भी हद तक जा सकता है। पार्थ की बात सुनकर प्रशांत की तरह वसुधा को भी हैरानी हुई कि उसने सुनैना को नहीं पैदा किया है। सुनैना और उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इस हिसाब से पार्थ को भी उससे गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा वो उसका फेवर कर रहा था। वसुधा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप राधिका के साथ अपने घर आ गई थी। राजवंश फैमिली का माहौल काफी गर्म हो गया था। सब एक दूसरे के खिलाफ थे और उसका फायदा उठा रहा था पार्थ। वहीं दूसरी तरफ मालविका को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। सब जानते थे कि वो बीमार होने का बहाना बना रही थी, फिर भी केशव के कहने पर उसे बाहर ले जाया जा रहा था। वहीं मालविका के भागने के लिए भी प्लान्स तैयार चल रहे थे। उसके पास आयशा की मौत की खबर पहुंच चुकी थी और वो उसकी मौत का जिम्मेदार इशिका और अभिमन्यु को ही समझ रही थी। मुझे पता है मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कल का दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा इशिका। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई थी तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें जिंदा रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी, मालविका ने मन ही मन कहा। फिर उसकी नजर अपने पीछे बैठे कांस्टेबल पर गई, जिससे केशव ने उसे भगाने के लिए कहा था। कांस्टेबल के प्लान के ऊपर भी मालविका एक प्लान बनाकर बैठी थी। वो अचानक उठी और अपनी साड़ी के पल्लू से कांस्टेबल का मुंह ढकने लगी। कुछ ही देर में वो बेहोश होकर नीचे गिर गया था, तो मालविका ने उसके हाथ से चाबी ली और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई थी।